ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। भारत और मलेशिया के बीच श्रम और रोजगार, आयुर्वेद तथा पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा और खेल के क्षेत्र में कल समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नागरिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार तथा आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में इसमें एक नई ऊर्जा आई है। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के साथ फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत के यूपीआई को मलेशिया के पेनेट से जोड़ने का काम किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रूपये और मलेशिया के रिंगगिट में किया जा सकता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, बहुलतावाद और परस्पर सम्मान की भावना दोनों देशों के संबंधों का आधार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पोलैंड की राजधानी वारसो में श्री मोदी का रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और वहां के राष्ट्रपति आन्द्रेज डूडा से भेंट करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों, व्यापार प्रतिनिधियों और पोलैंड में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल की तलाश की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सोशल मीडिया से पीड़िता महिला डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाइस एडमिरल सर्जन आर सरीन की अध्यक्षता में कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों और विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम तैनात करने का भी आदेश दिया। पीठ ने मामले से निपटने के पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल के अधिकारियों के तौर तरीकों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठाणे जिले के बदलापुर स्कूल की घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और सरकार ने इस मामले में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का फैसला किया है। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा है कि बदलापुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, घृणित और दिल दहला देने वाली है। महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में कल रात कई दुकानों में आग लग गई। वारदात के बाद स्थानीय अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में लगा हुआ है। आग लगने के कारणों और इसके नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।